તારીખ 16/5/1997 ડાયરીના બોલ નંબર 195 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 64
पत्र को प्रारंभ करने में शुरू में एक नमस्कार वचन लिखा है। सत्स्वरूप को अभेद रूप से अनन्य भक्ति से नमस्कार। सत्स्वरूप माने अपनी आत्मा, अपना परमात्मा स्वरूप को अभेद रूप से मैंने निर्विकल्प भाव से उसको अभेद रूप कहते हैं, क्योंकि वो तो मेरा स्वरूप है, उसमें ये मेरा स्वरूप है ऐसा विकल्प क्यों। अपने रूप निर्विकल्प भाव से अनुभव करता हूँ, मैं झुकता हूँ अपने स्वरूप में ही, अभेद भाव से झुकता हूँ और अनन्य भक्ति है इसमें मेरी, वो मेरे स्वरूप के प्रति बहुमान है क्योंकि वो परिपूर्ण परमात्मा तत्व है, इसलिए इसकी भक्ति पूर्वक मैं नमस्कार करता हूँ। तो अभेद भाव भी है और अनन्य भक्ति भी है। अनन्य भक्ति मैंने ऐसी भक्ति नहीं हो कहीं, ऐसी अन्य स्थान में ऐसी भक्ति नहीं हो, ऐसी अनन्य भक्ति, ऐसे भाव से मैं झुकता हूँ नमस्कार करता हूँ। इतना नमस्कार वचन एक स्लोगन के रूप में लिया है। जिसे मार्ग की इच्छा उत्पन्न हुई है
जी।
किसके लिए ये पत्र है कि जो जिसको ऐसी इच्छा हो यानी भावना हो कि मुझे संसार से तिरने के लिए कोई उपाय चाहिए, कोई मार्ग चाहिए, इस ऐसी जिसकी भावना या इच्छा हो, इसके लिए बात कर रहे हैं। जिसको ऐसा नहीं है उसके लिए ये बात नहीं है। तो सबसे पहले अपने परिणाम को अवलोकन करके देखना चाहिए कि हमको मार्ग की इच्छा है या नहीं है। अगर है तो उसे सब विकल्पों को छोड़कर क्या सोचना है इसमें कि मार्ग के विषय में अनेक बातें हैं, साधन के विषय में अनेक बातें हैं, ये सब विकल्पों को छोड़ देना क्या आज्ञा है। देखो इस एक विकल्प को बार बार स्मरण करना आवश्यक है। जो परिभ्रमण के विषय में वो लिखना चाहते हैं वो बात का स्मरण बार बार होना जरूरी है। बहुत पद्धति से बात किया है क्योंकि ये प्रश्न उठता है, उठ सकता है। बहुत सी बातें हैं, ज्ञानी की आज्ञा में तो भक्ति करने की बात है, शास्त्र पढ़ने की भी बात है, सत्संग करने की भी बात है, बहुत सी बातें हैं, फिर इस बात पर वजन क्यों? क्योंकि इस विषय में स्पष्ट आज्ञा है, कृपालु देव की आज्ञा है ऐसा लें या जिनेश्वर देव की आज्ञा है ऐसा लें, दोनों एक ही बात है। भगवान के अभिप्राय में और ज्ञानी के अभिप्राय में कुछ अंतर नहीं होता। इसलिए यहाँ सब विकल्पों को त्याग करने की बात कर दिया है, सब विकल्पों को छोड़ दिया, सब विकल्प छोड़ दे। पहले सबसे पहले हम जो कहना चाहते हैं उसी पर ध्यान दें। दो बात आई है, एक तो जिसे मार्ग की इच्छा उत्पन्न हो वो उसकी बात है, और दूसरा कि और सब विकल्प को छोड़ना है। स्पष्ट आज्ञा दे दिया है, कोई विकल्प मत करो, जो हम पहले कहते वही करो। और वो बात वो है कि अनंत काल से जीव का परिभ्रमण हो रहा है। जीव का मैंने थर्ड पर्सन नहीं है यहाँ, अनंत काल से मेरा परिभ्रमण हो रहा है, फिर भी उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती। निवृत्ति मैंने नाश, अभाव, कि ये परिभ्रमण का नाश क्यों नहीं होता है, उसका अभाव क्यों नहीं होता है। धर्म साधन तो भूतकाल में यम नियम संयम आप क्यों कोई कसर नहीं रखे, तो साधन बार अनंत क्यों। तो उसकी निवृत्ति मैंने नाश क्यों नहीं हुआ, मेरा परिभ्रमण का नाश क्यों नहीं होता है।
ऐसे इसमें ऐसे कौन कौन से विकल्प मुख्य रूप से होते हैं, इसके कारण से हम परिभ्रमण की चिंता के ऊपर मुख्य रूप से विचार नहीं कर पाते हैं।
एक तो अन्य प्रकार से अपनी मनमानी पद्धति से हम एक तो काम करना चाहते हैं, दूसरा हमारा जो परलक्ष्य है वो ऐसा का वैसा रहा है। यहाँ मेरा परिभ्रमण की बात है, इसलिए लक्ष्य मेरे पर आएगा, अपने पर आएगा, स्वयं के पर आएगा। तो जो साधन किया वो तो परलक्ष्य के किसे किया या परिभ्रमण की चिंता किए बिना किया। मुक्षु थे, सत्संग में आने में कुछ साल चले गए, कोई खास डेवलपमेंट हुआ नहीं, फायदा हुआ नहीं। एक दिन पूछने लगे कि इतने साल हमको हो गए और हमारी परिस्थिति देखते हुए हम वहां के वहां है, बात तो इतने साल में काफी समझ में आ गई है, अब तो बहुत सी बातें रिपीटेडली समझ में लेते हैं या रिपीटेडली सुनाई देते हैं, अब क्या करें और ऐसा क्यों हुआ। तो हमने पूछा कि आप कैसे आते इधर आ गए, आपका प्रवेश कैसे हो गया। तो उसने जो बात थी प्रासंगिक वो बात बता दी कि इस तरह से हमारा आना हो गया है और ऐसे ही हम चालू हो गए सत्संग में आने के लिए और अभी भी चालू ही है। क्योंकि आपका जो प्रवेश है जो जिस ढंग से होना चाहिए इस ढंग से नहीं हुआ है। वास्तव में आपको परिभ्रमण का दुख लगा हो और इस लाइन में आने के लिए आपने सोचा हो तो ये हालत नहीं बनती, लेकिन कोई प्रसंग वशात आपका आना हुआ और फिर आपको लगा कि नहीं बात तो कुछ ठीक है, चलो और जगह तो ऐसी बातें भी नहीं होती है और कई बातें हमें को समझने में मिलती है, तो चलो अपन आगे चालू रखो इसको। को अपने अनुकूलता के अनुसार खाने का चालू रखा, इस तरह से अनुकूलता के अनुसार जितनी जितनी अनुकूलता है उतना उतना लाभ लेते हैं, और करे भी क्या, पर भी जिम्मेवारियां तो बहुत है। हाँ, ये हालत रहती है। कहने का आशय वो है कि प्रवेश सही ढंग से होता है तो आगे बढ़ता है मुमुक्षुता में, अगर सही ढंग से प्रवेश ही नहीं हुआ और फिर बोले कि हमको इतना साल सत्संग करते हुए, शास्त्र पढ़ते हुए, पूजा भक्ति करते हुए, समर्पण करते हुए हो गया, हमको फायदा नहीं हो रहा है, तो यहाँ ये ज्ञानी पुरुष की आज्ञा है। क्या है
ज्ञानी पुरुष की आज्ञा?
कि मार्ग की इच्छा अगर तुमको उत्पन्न हुई हो तो सब विकल्पों को छोड़ करके मेरा परिभ्रमण अनंत काल से चल रहा है तो उसका नाश क्यों नहीं होता है, और वो क्या करने से हो, मेरा प्रयोजन मेरा परिभ्रमण का नाश करने के सिवा और कुछ नहीं है, वो बात उसमें आ गई। क्या करने से मेरा परिभ्रमण का नाश हो, ये बात क्यों लिया कृपालु देव ने, ये बात क्यों लिया है? बहुत अनुभव के बाद ये बात लिया है। बहुत अनुभव माने खुद ने भी पूर्व काल में काफी मनमानी पद्धति से बहुत साधन करके परेशान हुए हैं, मार्ग नहीं मिला। बाद में जब से अपने शुरुआत हुई है उनको अपना अनुभव को कहते हैं, क्या कहते हैं, अपना अनुभव को कहते हैं, ठोस अनुभव है इसके पीछे। तो कहते हैं कि वो क्या करने से हो, यह परम जिज्ञासा होनी चाहिए, पर यही प्रयोजन होना चाहिए। दो बात है उसमें, एक तो क्या करने से हो, उसमें मेरे को इसके सिवा कोई प्रयोजन है ही नहीं, एक बात। दूसरा कि मेरे उसमें शोधक वृत्ति है कि क्या करने से होगा, मेरा परिभ्रमण का नाश क्या करने से होगा, मार्ग की खोज। अब जो है ये प्रश्न उठाया है, इसकी भी हम तुलना करें तो बात सही मालूम पड़ेगा। इसलिए कि इस संसार में इससे कोई बड़ी समस्या है ही नहीं, बताइए, हो तो बता दीजिए, इससे कोई बड़ी समस्या है ही नहीं। और ये सबसे बड़ी समस्या है उसको याद में लिया है, इसकी चिंता होनी जरूरी है। छोटी मोटी तो फिर ये बड़ी का रास्ता निकल गया तो छोटी मोटी का तो अपने आप निकल ही गया। इसलिए बहुत अनुभव से इस बात को यहाँ पर रखी गई है। और समस्या जब सबसे बड़ी है तो उसके अनुपात में इसका प्रयास भी करना होगा, वो बात उस पर ध्यान में आनी चाहिए। जब एक मृत्यु को नहीं आने देने में, मृत्यु आवे नहीं, मृत्यु का प्रसंग होवे तो भी, जैसे रोग आदि, तो भी रोग मिट जाए, इसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार है कि नहीं है, ये हम क्या क्या नहीं करना चाहते हैं बताइए। हाँ, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमको मरना नहीं है। बचपन में तो मरना नहीं है, युवानी में तो मरना नहीं है, बुढ़ापा में भी मरना नहीं है, पूछ लीजिए किसी बूढ़े को भी। हाँ, मरना नहीं चाहेगा। तो इसकी चिंता हम इतनी करने के लिए तैयार है, ये हमारी वास्तविक परिस्थिति है। तो अनंत परिभ्रमण, अनंत जन्म मरण से छुपने के लिए हमारी कितनी तैयारियां होनी चाहिए? अंदाज लगा देना। इसलिए ये प्रश्न उठाया गया है, दो प्रश्न उठाया है। एक तो अनंत काल से परिभ्रमण हो रहा है, उसका नाश नहीं क्यों होता, और तो नाश करने का उपाय क्या है, मार्ग क्या है, क्या करने में ऐसा क्या करूं कि इसलिए मेरी चार गति का परिभ्रमण नहीं हो। इस वाक्य में अनंत अर्थ समाया हुआ है। हम देखो क्या लिखा है, कि वाक्य तो उतना ही है लेकिन उसमें अनंत अर्थ समाया हुआ है। वो समझ में कैसे आ रहे, कि वेदना में प्रवेश हो गए तब वास्तविक ये प्रश्न अंतर से उठे और उसकी जिस अनुपात में चिंता होनी चाहिए इस अनुपात में चिंता चालू हो, तब पता चलेगा कि इस वाक्य में क्या क्या भरा है। नहीं पड़ेगा क्या कहना चाहते हैं, कि ये हमने कोई मामूली बात नहीं लिखी है, बात मामूली दिखे ऊपर ऊपर से, कब दिखेगी ऊपर ऊपर से, मामूली दिखेगी लेकिन ऐसी ये मामूली बात नहीं है। इस वाक्य में अनंत अर्थ समाया हुआ है, और वो बात समझ में कब आएगी, कि उस प्रश्न उठेगा तब, स्वयं को जब ये प्रश्न उठेगा तब ये बात समझ में आएगी कि इसमें क्या भरा है, वहां तक वो बात समझ में नहीं आएगी। क्यों? कि हमारे जो अनंत प्रकार के भाव हैं वर्तमान में, उसमें परिभ्रमण का कारण साथ ही साथ चल रहा है। जब परिभ्रमण की चिंता होगी तब ये बात सब समझ में आने लगे, अरे ये भी परिभ्रमण का कारण, ये भी परिभ्रमण का कारण, ये भी मैं सारे दिन क्या कर रहा हूँ, मैं मेरा ही परिभ्रमण का कारण को सेवन कर रहा हूँ, ये क्या बात है, मेरे भूल करने की भी कोई हद होनी चाहिए। जब मैं भूल बेहद करता हूँ ये सही रूप से मालूम पड़ेगा तो उसका पश्चाताप आए बिना रहेगा नहीं। तो इसमें क्या बात लिखा, देखो बहुत अनुभव से बात लिखी है, इस वाक्य में कही हुई चिंतना किए बिना मैंने इस समस्या की चिंता, जितनी बड़ी समस्या है इसके अनुपात में हुए बिना, जितनी बड़ी मुश्किल उतनी बड़ी चिंता। जैसे मृत्यु की चिंता तो अपन लेते ही हैं, और भी ले लें कि कोई कहेगा कि तुम मकान खाली करो, भी परिवार लेकर के कहाँ ठहरेंगे, आगे इससे बड़ी समस्या आई है कि गांव खाली कर दो, इस गांव में नहीं रहना है, मकान में तो नहीं रहने देंगे, इस गांव में भी रहने नहीं देंगे, वही इससे बड़ी समस्या। अनजाने गांव में कहाँ किस गांव में जाएंगे, इससे आगे इससे बड़ी आपत्ति आई कि इस देश में तुमको रहने का रजा नहीं है, इजाजत नहीं है। पाकिस्तान वालों ने दिल्ली जीत लिया है और सभी हिंदू को निकाल देने का है। अभी हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रह सकते, या जिसको रहना है उसको मुसलमान होना पड़ेगा। उठाओ कुरान को वरना चले जाओ देश छोड़ करके। कहाँ जाना कि तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाना, हम नहीं जानते, लेकिन तुमको कहीं नहीं रहना है। मुझे बड़ी समस्या तो घर खाली करने के जिस हिसाब से जो चिंता आएगी वो गांव खाली करने में इससे बड़ी आएगी और देश खाली करने में इससे बड़ी आएगी कि नहीं आएगी। तो अनंत जन्म मरण की जो समस्या है वो कितनी बड़ी है, वो बात जहां तक समझ में यथार्थ रूप से नहीं आती वहां तक इसकी चिंता नहीं होती, और जब तक इसकी चिंता नहीं होती वहां तक इसका रास्ता निकलता नहीं। कोई भी कार्य का कार्य नहीं होता है तो ये होने का रास्ता हम कब ढूंढते हैं जी। कि कार्य होने की अति आवश्यकता लगे तब चलेगा नहीं क्या नहीं। ये काम किए बिना चलेगा नहीं। अभी तब क्या विचार आता है कि कुछ न कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ रास्ता तो हमको निकालना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं चला सकेंगे। तब इसका रास्ता कुछ न कुछ निकल जाता है, और यहाँ तो निकल जाता ही है समझ लेना। कहीं और जगह नहीं निकलता हो तो मुसलमानों का नहीं निकलता हो तो अपने को उसकी चर्चा में नहीं जाना है, लेकिन यहाँ ये जो सबसे बड़ी समस्या है इसकी चिंता इसके अनुपात में हुई, अनुपात में मैंने उसके परसेंटेज में उसके प्रमाण में जितनी चिंता छे ना प्रमाण में, जितने समस्या छे ना प्रमाण में चिंता थी एम के मुझे मैंने अनुपात के से हिंदी में तो उसमें क्या क्या अर्थ समाया है वो बात समझ में आ जाएगी। अनंत अर्थ उसमें समाये हैं और उसकी चिंतना हुए बिना, उसके अनुपात में चिंतना हुए बिना। और ये पहला प्रश्न का के विषय में क्या परिणाम होना चाहिए, पहला जो प्रश्न है कि उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती वो चिंता सूचक है कि मेरे परिभ्रमण का नाश क्यों नहीं होता, ये चिंता का विषय है। दूसरी बात, और वह क्या करने से हो, जो भी करना है उसके वो मेरे करना ही है, उसके लिए दृढ़ होकर तरसे बिना अपने गुजराती में झूरिया बिना शब्द थे, जैसे बहुत तरसता है तो जो हालत होती है झूरने की बात लिया है। झूरने में मुख्य बात वो है कि इतना दुखी हो बस दुख से बाहर नहीं निकल सकता, झूरना वाला दुख से बाहर नहीं निकल सकता, इतना दुखी हो जाए दुख से बाहर नहीं निकल सके। ऐसे हुए बिना इसके लिए मैंने मार्ग नहीं मिले, इसके लिए मार्ग की दिशा का, मार्ग के लिए तरसना है तो मार्ग की दिशा का अल्पभान भी नहीं होता। मार्ग का तो भान होता नहीं, लेकिन मार्ग किस दिशा में है इसका भान नहीं, अल्प भान भी नहीं होता। अब शास्त्र पढ़ करके लोग समझ लेते हैं इसमें क्या है। मार्ग दशमी दर्शन ज्ञान चारित्राणी है, हमको सम्यक दर्शन करना है, नायक का आश्रय करना है, नायक का आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है। हमको सब पता है, ये मार्ग का हमको सब पता है, है क्या नहीं है? कहते थे कि सब पता है, सब पता है, उसमें ही लापता है। बात सही है, वास्तव में कुछ पता नहीं है। ये जो जानकारी कर ली कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, नायक के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, हमको पता हो गया है, ये इसकी परिभ्रमण नहीं आने, ये जो पता है वाली बात है तो परिभ्रमण की चिंता और तरस नहीं आने में एक कारण हो गया, एक कारण बढ़ गया। कारण तो था ही, एक कारण खुद ने बढ़ाया, ये बात हो गई। मार्ग की दिशा का भी अल्प भान नहीं होता, वर्तमान में किसी को नहीं होता, वो बात सैद्धांतिक है। पूर्व में किसी को हुआ नहीं, नहीं तो कभी किसी को ऐसा लगता भी किसी को तो वेदना है भी नहीं, मार्ग मिल गया नहीं, कृपालु भी मिला देते हैं। पूर्व में किसी को नहीं हुआ, एक भी ज्ञानी ऐसा नहीं हुआ है, और अगर कोई कहता है कि नहीं हो गया है तो ज्ञानी नहीं हुआ है, समझ लेना क्या वो ज्ञानी हुआ ही नहीं है, समझ लेना, क्योंकि पूर्व में नहीं हुआ, वर्तमान में होता नहीं, पूर्व में हुआ नहीं और भविष्य काल में भी नहीं होंगे, कोई नहीं होगा, सैद्धांतिक बात है। इसलिए तीनों काल को ले लिया कृपाल देव कि यही मार्ग में पहुंचने के लिए क्रम का विषय है, कि सब विकल्प को छोड़ करके तुमको यहां से चालू करना पड़ेगा। पहले मैं भक्ति कर लूं वो बात भी नहीं है, और पहले मैं शास्त्र पढ़ लूं वो भी बात नहीं है, पहले मैं वैराग्य कर लूं वो भी बात नहीं है, पहले मैं संयम करके त्याग कर लूं वो भी बात नहीं है, एक भी बात नहीं है, सब विकल्प को छोड़कर स्पष्ट आज्ञा कर दी है। ये बात समझ करके कल्पना विहार चलता है, क्या कल्पना विहार और कुछ नहीं, बहुत ठोस बात की है और इसकी वास्तविकता भी उतनी ही ठोस है, इसलिए वो बात ठोस है। हमने तो ऐसा जाना है, इसका मतलब यह है कि हमने तो ऐसा अनुभव किया है, और 161 वगैरह जो है तो उनके वेदना का 128 पत्र, ये सब बात उसका सबूत है कि हमने ऐसा जाना है, मैंने हमने ऐसा अनुभव किया है, और इसलिए आप सबको वही खोजना है कि मेरे लिए ये बात कब चालू हो जाए, यही खोजना है। किसको? आप सबको, आपको करना है और आपको नहीं करना है, उसमें किसी को बाकी रखा नहीं है, सब मुमुक्षु के लिए कानून तो एक ही है, जिसको मार की इच्छा हो उनके लिए एक ही कानून है। मारने की इच्छा नहीं हो, मार के इच्छा नहीं हो तो बात अलग है। मार के इच्छा हो तो एक ही कानून है, दूसरा कानून है ही नहीं। ये ज्ञानी की आज्ञा है, दूसरे शब्द में कहें तो ये तीर्थंकर देव की आज्ञा है, ऐसा समझ लेना। और इसके सामने हमको कोई तर्क लड़ाना नहीं चाहिए। अगर हम आज्ञाकारिता में है तो सचिन से प्रवृत्ति कर रहा हो तो उसकी चर्चा नहीं करनी। उसके बाद मैंने ऐसा परिणाम होने के बाद दूसरा क्या जानना, आगे क्या जानना और आगे क्या करने के लिए जानना, क्या मुझे क्या क्या करना चाहिए वो मालूम होता है। बाद में ही सूझ आती है कि मुझे क्या जानना और मुझे क्या करना। इसके पहले क्या जानना चाहिए क्या नहीं जानना चाहिए इसका कोई विवेक है नहीं। और हम कोई भी शास्त्र लेकर के बैठ जाते हैं, आज द्रव्य दृष्टि प्रकाश ले लिया, कब दूसरा ले लिया, कब तीसरा ले लिया, समय सार ले लिया, ऐसा नहीं चलता। इसके बाद क्या जानना वो मालूम पड़ेगा। इसके पहले मालूम होता ही नहीं और मालूम है ही नहीं और पढ़ने लग गए। एक बच्चा होता है उसको ABCD से शब्द पढ़ने में आ गया है तो कोई भी सब वो शब्द वो पढ़ सकता है क्योंकि ABCD जान लिया उसने। अब क्या है कि पहली प्रथम श्रेणी में पहली क्लास में बैठने के जगह कॉलेज की किताबें लेकर के बैठ गया है और पढ़ने भी लग गया। क्या समझेगा? कुछ नहीं समझेगा। यहाँ तो और एक भूल करता है कि मैं समझता हूँ, मैंने पढ़ा और मैं समझा भी। कि तुमने और एक अपनी तकलीफ बढ़ाई, क्या किया? अपनी एक तकलीफ और बढ़ा दी। अब मैं नहीं समझता हूँ वो बात जहाँ तक नहीं आएगी वहां तक तुम्हारा पता लगने वाला नहीं है। समझता हूँ मैं लापता हो गया। उसको मजा आ गया ना, क्योंकि उसको सूझ आ गई आगे क्या जानना और क्या करना, उसकी सूझ आ गई। अगर ऐसा लगता हो तो ये तो प्रेरणास्पद बात होगी। इसके लिए प्रेरणा मिली कि नहीं मिली कि इसके बाद सब समझ में आता है, इसके पहले कुछ समझ में आता ही नहीं। तो मैं समझता हूँ इसके पहले ये अपना क्षोभ क्षमता अहम है। शास्त्र भाषा में उसको शास्त्रीय अभिनिवेश कहने में आता है। बहुत शास्त्र पढ़ा हो, बहुत चर्चा किया हो, मान लिया हो कि हम बहुत सूक्ष्म समझते हैं, उसको बोले कि आप परिभ्रमण की चिंता में आए नहीं है इसलिए मुमुक्षुता की पहली सीढ़ी पर भी आपका पैर नहीं पहुंचा है, तो उसको क्या लगे?
खराब लगेगा।
सात मजले से पटका हो ऐसा लगेगा कि अरे मैं तो छत से गिरा दिया। ये बात हो जाएगी,
सारा मेहनत खराब कर दिया।
हाँ, सारा मेहनत खराब कर दिया मेरा। लेकिन खराब हो ही गया है। खराब कर दिया क्या? खराब हो गया है। भले ही पत्र संक्षेप में लिखा है लेकिन पूरी पूरी बात कर दी है, एक एक वाक्य में पूरी पूरी बात कर दी है। एक तो इस वाक्य में अनंत अर्थ समाया हुआ है और बहुत बड़ी समस्या है तो इसके अनुपात में चिंता होनी चाहिए, तो मार्ग के लिए तो तरस न आनी चाहिए, कैसे जुड़ना आनी चाहिए, अरे मार्ग मुझे नहीं मिलता है, मार्ग मुझे नहीं मिलता है, माथे में सिर में कीड़ा कीड़े पड़ जाने चाहिए क्या, कि अगर मैंने इस मनुष्य भव में यथार्थ पद्धति से मार्ग नहीं पकड़ लिया तो मेरी हालत इतनी बुरी होगी कि जिसकी कोई हद नहीं होगी। तो इसकी चिंता कितनी होनी चाहिए कि जितना माथे में कीड़े खदबदते हो उतने। माथे में कीड़े पड़ जाने चाहिए, जिसके माथे में कीड़े खदबदते हो और काटते हो वो कहां रस लेगा बताइए, किधर रस लेगा, वो लेगा क्या, ले ही नहीं सकेगा। मेरा माथा मत देखो, ये परिस्थिति सुधरे बिना मेरी हालत नहीं है कि मैं कहीं भी रस ले लूं। तो कहीं रस नहीं लेगा, उसी का दूसरा नाम ही वैराग्य है, उसका दूसरा नाम ही उदासीनता है, यथार्थ उदासीनता ही। बाकी तो और यथार्थ वैराग्य तो बहुत बार आया है, त्याग विराग अथाग कियो, ये और यथार्थ किया है सब त्याग विराग, ये यथार्थ रूप से आया है, यथार्थ पद्धति से आया है। बस अब मार्ग मिल जाएगा, मार्ग की दिशा भी का पता भी लगेगा और ऐसा हुए बिना तीन काल में किसी को मार्ग मिला हो ये वस्तु के स्वरूप के बाहर की चीज है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है ही नहीं। ऐसे ही मार्ग मिल जाए किसी को फ्लूक में, ये वस्तु के स्वरूप में नहीं है। अपना अनुभव कहा, सिद्धांतिक बात से तीन काल को ले लिया और सबको आज्ञा दे दी कि आपको सबको यही करना है और कुछ गड़बड़ करना नहीं है। नो वॉइस, कोई आवाज नहीं करने का है, ये एक ही काम के पीछे लगो, उनको कोई बात सुनने की है ही नहीं। लेकिन वो करना वो नहीं करना वो बाद में समझ में आएगा क्या जानना क्या करना है। अब छोड़ो इस बात को, पहले इसके काम, इस काम के पीछे लगता हूं। ज्ञानी के मार्ग पर चलने का जिसको निश्चय है उनको तो अपना काम चालू हो ही जाएगा, बाकी अज्ञानी के मार्ग पर चलने का जिसको निश्चय नहीं है उसको स्वच्छंद होने से, वो स्वच्छंद वाला तो कहां कब किधर कितना दूर चला जाएगा कहना मुश्किल है। Thank you.
भैया।